Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 8, Text Number 14. इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञान तिमिरंगस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साकृशातं सहगण रघुनाथ वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु सरस्वती गोपेश गोपी ककांता श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तत्कांचनं गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वैश्यभानु सूते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं श्रीवासदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय। आठवां अध्याय श्लोक नंबर 14 अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस अध्याय का सार है जो अब तक हमने पढ़ा। भगवान अब इस श्लोक में कंक्लूजन बता रहे हैं कि वास्तव में मृत्यु के समय क्या करना है। जैसे भगवान का अर्जुन का अंतिम प्रश्न है, प्रयाण काले सकथम ये योसी नियतात्मा भी, जो नियतात्मा भी हैं वो मृत्यु के समय आप कैसे जान पाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अलग अलग तरीके बताए भगवान ने कि क्योंकि अनंत समय में जिस जिस भाव का याद करेंगे तो दूसरा जन्म हमें ऐसा ही मिलेगा, इसे क्या करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरा युद्धच, सारा समय मुझे स्मरण करना है और साथ साथ में अपने कर्तव्यों का पालन करना है। मैं अर्पिता मनोबुद्धि, आपको अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पण करना है। मामे वैशक्त संशय, इस तरह अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। और ऐसा करने के लिए आपको बहुत बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं देवं याति पार्थानुचिन्तयन्। कि इस अभ्यास से युक्त होकर और हृदय को नान्यगामिना मन को निरंतर भगवान में लगाना है, अविचलित भाव से किधर भी जाने नहीं देना है। और इस तरह से भगवान कहते हैं कि याति पार्थानुचिन्तयन्, अगर इस तरह से वो याद करता है तो अवश्य ही मुझे प्राप्त करता है। और फिर भगवान ने बताया कि परम पुरुष भगवान का ध्यान किस तरह से करना होता है, क्योंकि भगवान अचिंत्य हैं तो उनको कैसे ध्यान करना है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीया समनुस्मरे ध्यान सर्वस्य धाता रमचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात। के मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि योग मिश्र भक्त जो होते हैं, अब भक्त विभिन्न प्रकार के होते हैं, योग मिश्र भक्त भगवान को अंत समय में किस प्रकार से याद कर सकते हैं उसकी विधि भगवान ने बताई कि क्या करना है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। जो वेदों की ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो ये भगवान अब विधि बता रहे हैं कि योग में स्थित करके जो अष्टांग योग की पराकाष्ठा भगवान बता रहे हैं क्या करना है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुद्ध्य च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थित कर सकता है। और उसके बाद क्या करना है, इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर को त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। इतना बताने के बाद भगवान ने सोचा कि ये तो बहुत ही कठिन बात बता दी मैंने और अर्जुन को भी, क्योंकि मैंने जैसे बताया था जब हम कोई बात करते हैं तो सामने वाले पर क्या रिएक्शन हो रहा है उसका उसे हमें मतलब भाव भी अनुभव कर रहे होते हैं कि जब मैंने ऐसा सोचा है तो डेफिनेटली वो ये सोच रहा होगा और फिर उसका समाधान भी हम बता रहे होते हैं। तो इतना जब भगवान ने बता दिया तो अर्जुन के मन में विचार आ रहा है कि ये सब तो बहुत कठिन है, क्योंकि अर्जुन पहले ही कह चुका है कि चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलव दृढ़म। ये मन को कैसे रोक दूं, इंद्रियों पर कैसे संयम करूं, मैं करूं उस समय कैसे, ये प्रोसेस कितना हार्ड है कि सब इंद्रिय क्रियाओं को रोकना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और मन सिर पर है ना प्राण वायु को लगाना है अज्ञेय चक्र पर, ये इस कलयुग में संभव लगता है तुमको कृष्ण। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं हाँ ये थोड़ा कठिन है, तो चलो ठीक है मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो आज भगवान, अब भगवान को प्राप्त करने का जो तरीका है वो बहुत ही सरल करके बता रहे हैं, और क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान को पता है कि मुझे प्राप्त करने के कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो आज भगवान बहुत ही सरल और बहुत ही स्वाभाविक, जो कलयुग में बहुत ज्यादा प्रभावकारी और बहुत ज्यादा सुगम है, जो सब कोई, एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, ऐसा तरीका बता रहे हैं। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 14, कृपया मेरे साथ उच्चारण कीजिए। भगवान ने कहा, अनन्य सीता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पाठ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पाठ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पाठ नित्ययुक्तस्य योगिनः। शब्दात् अनन्यचेता, अनन्यचेता मतलब चित्त को भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी मत सोचने दो, अविचलित भाव। चित्त हृदय में केवल अपने प्रेमी भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करना है। कब करना है? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा? नहीं, भगवान कहते हैं सततम, सदैव, हर क्षण में। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका का चिंतन करता है, उसी प्रकार भक्त सदैव भगवान का चिंतन करता है। और भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम, जो कंटिन्यूअस अविचलित भाव से मेरा चिंतन करता है। यो माम स्मरति नित्यश, यो माम, जो मुझको, कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े हुए अपने मित्र को बोलते हैं यो माम स्मरति, यानी कृष्ण कह रहे मुझे, जो कृष्ण को स्मरण करता है, कंटिन्यूस कृष्ण को याद करता है नित्यशः, नियमित रूप से। ऐसा नहीं है कि कभी कोई प्रॉब्लम आई तो भगवान को याद करना या भगवान के पवित्र नाम का जप करना छोड़ दिया, कभी ऐसा हुआ तो भगवान की स्मृति भूल गई, कभी और भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों के आकर्षण में भगवान, नहीं, ऐसे लोग की बात नहीं कर रहे। भगवान किसकी बात कर रहे हैं? अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः, जो हर एक सिचुएशन में कंटिन्यूअस मुझे याद करते हैं। अब जो कंटिन्यूअस याद कर रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना सारा समय तो वो याद कर रहे हैं, और उसी सारे समय में एक समय कौन सा होगा? डेफिनेटली एक समय मृत्यु का भी उसी 24 आवर्स में से निकलेगा। अब वो क्योंकि 24 आवर्स भगवान का स्मरण करता है, तो उसके लिए फिर योग अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। उसको ये प्राण वायु को अज्ञेय चक्र पर लाकर और ये भावों के सेंटर में लाकर रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यूस भगवान का स्मरण करता है। तो भगवान अत्यंत ही सुंदर बात बताए आगे वाली लाइन में, तस्याहं सुलभः पाठ, उसको कोई हार्ड प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। तस्याहं, उसको में सुलभ, बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है पाठ। किसको? नित्य युक्तस्य, नित्य यानी जो नियमित रूप से, युक्तस्य यानी लगा हुआ है, योगिना यानी भक्ति में लगा हुआ है, जो अपना संबंध मुझसे जोड़ता है और कंटिन्यूस मेरा स्मरण करता है, उसको मैं बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। अनुवाद, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे তাৎপর্য শ্রীল প্রভুপাদ দ্বারা। শিল প্রভুপাদ কি জয় হো।
শিল প্রভুপাদ জি সমঝা রে কি ইস শ্লোক মে উন নিষ্কাম ভক্তো দ্বারা প্রাপ্তব্য অন্তিম গন্তব্য কা বর্ণন হ্যাঁ যে ভক্তি যোগ কে দ্বারা ভগবান কি সেবা করতে হ্যাঁ। আব ইসমে সিফ আর সিফ শুদ্ধ ভক্ত কি বাত কি যা রই হ্যাঁ, যে কেবল ও কেবল কৃষ্ণ কি ভক্তি মে লগে হুয়ে হতে হ্যাঁ আর সদৈব কৃষ্ণ কি সেবা করতে হ্যাঁ আর উসি মে আনন্দ লেতে, উনকো ইভেন উনকে মন মে ইয়ে ইচ্ছা ভি নহীঁ হতি হ্যাঁ কি মে ভগবান কে ধাম মে যাউঙ্গা ইয়া মুঝে মুক্তি মিলেগি, ये सब उसके मन में होता नहीं है। बस वो खाली प्रेम के साथ सदैव भगवान का अनन्य चेता सततम, उसके मन में ये भी नहीं होता है कि मुझे मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे वापस आना पड़ेगा, बस वो प्रेम करता है कृष्ण से तो सदैव कृष्ण को याद करता है। और इस ऐसे भक्तों की बात यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हो रही है। अब पिछले श्लोकों में चार प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, आठ जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी 7.16 में हमने पढ़ा था, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिन अर्जुन आतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने कहा चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी भक्ति में आते हैं, आठ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। इनको भगवान ने शुद्ध भक्त नहीं कहा था, उनको भगवान ने क्या कहा था, पुण्य आत्मा सुकृतिनो। और भगवान ने 7.19 में कहा था बहुनाम जन्म नाम अंति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानी भी अगर हो तो भी बहुत बहुत जन्मों के बाद जब उसे ये रियलाइज हो जाता है कि अंतिम गोल मैं हूँ तब वो मेरी शरण में आता है। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद वही बात बता रहे हैं कि पिछले श्लोकों में चार प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, आज जिज्ञासु अर्थात तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है। अभी मुक्ति के विषय में हमने ये भी पढ़ा ना कि किस तरह से ओंकार का उच्चारण करते हैं, इंद्रिय क्रियाओं का सारा दमन करते हैं और प्राणों को भावों में सेंटर में जमाते हैं, ये सब मुक्ति की विभिन्न विधियां हैं, उनके विषय में भी बताया गया। कर्मयोग ज्ञान योग तथा हठ योग। अब यहाँ पर हम पीछे यानी कि जितने भी अध्याय हमने पढ़े हैं उनमें कर्म योग भी बताया गया, ज्ञान योग भी बताया गया, हठ योग भी बताया गया, हठ योग यानी जो ये ना अष्टांग योग वगैरह उसके विषय में सब कुछ बताया गया। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी योग क्रिया करो, कर्म योग कर रहे हो लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो तो कर्म योग विफल है, क्योंकि कर्म योग में क्या करना होता है, कर्म आप कर रहे हो और फल भगवान को आप अर्पण कर रहे हो, तो यदि भगवान के साथ आपका कोई संबंध नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भक्ति नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है तो फिर वो कर्म योग कर्म विफल है, उसका कोई लाभ नहीं है। उसी तरह से यदि ज्ञान योग है तो उसमें भी भक्ति आवश्यक है, और यदि अष्टांग योग है तो उसमें भी जैसे हमने कल पढ़ा कि प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्यायुक्तो योग बलेन सैव, यानी योग की शक्ति है बले लेकिन उसके साथ भी भक्त्यायुक्तो भक्ति होना आवश्यक है। तो जितने भी बाकी योग हैं उसमें यदि भक्ति योग सम्मिलित नहीं है तो फिर उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन अब वो सारे में भक्ति मिश्रित होती है, जैसे योग मिश्रित होते हैं, ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है, योग मिश्रित भक्ति होती है, या ये हठ योग मिश्रित भक्ति होती है, अलग अलग मिश्रित भक्तियां होती है। लेकिन जो आज का श्लोक है उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। ये बात हमें समझनी है, श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता, जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ पर क्लियर बताया है कि इस श्लोक में ये जो श्लोक भगवान बता रहे हैं
वो ना ही योग मिश्रित है, ना ज्ञान मिश्रित है, ना हठ मिश्रित है, ना ही कर्म मिश्रित है, क्योंकि इसमें पहला ही शब्द भगवान ने कहा अनन्य चेता, मतलब अविचलित, और किसी और ध्यान नहीं है भक्त का, केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो ये जो श्लोक है वो शुद्ध भक्ति को सूचित करता है, और भक्ति योग में भक्त के भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ इच्छा नहीं करता, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्यश। ऐसे भक्त की बात हो रही है, शुद्ध भक्त की, जिसका लक्ष्य केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अनुकूल है न कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तम। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अन्य अभिलाषता शून्यम, जब दूसरी सारी अभिलाषाएं समाप्त हो जाती है, कौन सी अभिलाषाएं, ज्ञान कर्माध्यनावृतम, ज्ञान ज्ञान प्राप्ति की, कर्म योग की और हठ योग की सारी अभिलाषाएं समाप्त हो जाती हैं, अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूल न कृष्णानु, वो कृष्ण को स्मरण क्यों करता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न लगता है, कृष्ण को प्रसन्न आने वाली काली कार्य करता है। शीलनम भक्ति उत्तमा, वास्तव में वही उत्तम भक्ति है। तो इसी उत्तम भक्ति का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। श्री प्रभुपाद जी बोलते इस श्लोक में उसी शुद्ध भक्ति की बात हुई है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति में तलाशना है, या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त की कोई इच्छा नहीं होती है कि मैं भगवान के लोक में जाऊं, या ब्रह्म लोक में जाऊं, या स्वर्ग लोक में जाऊं। शुद्ध भक्त तो ये चाहता है भगवान तो मुझे नरक में भी रखो, तो इससे मुझे कोई दुख नहीं होगा यदि वहां पर भी मुझे आपकी सेवा का अवसर मिल जाए। तो भगवान शुद्ध भक्त कभी भी सर्कमस्टेंसेस चेंज करने के लिए बात नहीं करता। शुद्ध भक्त चाहता है भगवान को कि सदैव मुझे अपनी भक्ति में रखो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी सेवा का अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, उससे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलाई अशांत। जितनी भी बाकी इच्छाएं हैं, चाहे भुक्ति की यानी भौतिक संसार में भोग करने की, मुक्ति की यानी भौतिक संसार से मुक्त हो जाना, सिद्धि यानी योग में सिद्धि ये परफेक्शन प्राप्त करना, ये सब जिसकी ये सारी इच्छा होती है सकलाई अशांत, वो सदैव अशांत रहता है, क्योंकि जिसके मन में इच्छा होती है वो कभी शांत नहीं रह सकता। तो शांत कौन रहता है, महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम। कृष्ण भक्त को ये सारी इच्छाएं होती ही नहीं है, अतएव शांत, इसलिए वो सदैव शांत रहकर भगवान की भक्ति करता। उसकी केवल एक ही इच्छा होती है कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, और जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कार्य करता है तो जानते हो भगवान की क्या इच्छा होती है, कि मैं कैसे अपने भक्त को प्रसन्न करूं, और जिसके लिए भगवान ये सोचे कि मैं कैसे उसको प्रसन्न करूं, तो भला उसके प्रसन्न और शांत होने में कोई संदेह हो सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसे पूर्ण शांति का लाभ होता है, और उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं, जो स्वार्थ चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, उनको कभी शांति प्राप्त होती नहीं। एक ओर जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्ति में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा बता रहे हैं कि क्योंकि ज्ञानी, ज्ञान योगी, कर्म योगी और हठ योगी का अपना अपना एक स्वार्थ होता है, लेकिन क्योंकि भक्त को कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो केवल भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रखता, इसलिए भगवान कहते हैं कि जो इस तरह से एक कनिष्ठ भाव से केवल मुझे प्रसन्न कर अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो केवल ये सोचता है जो कृष्ण को प्रसन्न करने वाला कार्य होगा वो मैं करूँगा और जिससे कृष्ण को जो कृष्ण को पसंद नहीं लगता होगा वो कार्य मैं नहीं करूँगा, तो ऐसे एक कनिष्ठ भक्त भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है। भगवान कहते हैं तस्य हम सुलभ पार्थ, वो प्रेम करता है और मुझे जीत लेता है अपने प्रेम से। आगे श्रीमद् रूपाल जी कहते हैं शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। अब वो भक्ति करता है जिधर उसका आकर्षण होता है कृष्ण के किसी स्वरूप में, तो उसकी भक्ति करता है। कृष्ण के अनेक स्वांश अवतार हैं यथा राम तथा नरसिंह, जिसमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेम भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलना पड़ता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो भगवान के बहुत सारे रूप है ना, तो किसी भी रूप को चयन करके भक्त उसकी ओर आकर्षण करता है और उसकी भक्ति करना शुरू कर देता है। अब उसके पास स्वरूप आ गया, उसके पास लीला आ गई, क्योंकि अब कोई भी जैसे नरसिंह भगवान की कोई भक्ति करता है या श्री राम, तो लीला आ गई, स्वरूप आ गए, तो ध्यान करना कितना आसान है कि भगवान कितने छोटे थे तो कैसे कार्य करते थे, कैसे अपनी मैया के साथ मतलब अलग अलग लीलाएं करते थे, नरसिंह भगवान ने कैसे प्रहलाद की रक्षा की, मतलब फिर उसका ध्यान करना तो बिल्कुल आसान हो गया ना। उसमें आपको फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व झेलनी नहीं पड़ेंगी जो अभ्यास योग अभ्यास करने वालों को करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, प्राणों को अज्ञेय चक्र पे लाओ, फिर भगवान के अंदर ध्यान लगाना, परमेश्वर जो हृदय में बैठा हुआ है उस पर ध्यान लगाओ, फिर ये जो हमने पढ़ा था ना समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय और प्राण वायु को सिर के ऊपर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थित करता है, फिर ओंकार का उच्चारण करता है और ब्रह्म में वो जाता है। तो ये सारी समस्याएं जो है, एक जो शुद्ध भक्त होता है जो भगवान के किसी स्वरूप को प्रेम करता है और किसी स्वरूप में आकर्षित हो जाता है, तो उसको तो वो भगवान के विषय में श्रवण करेगा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेगा और भगवान ने जो कहा श्रीमद् भगवद गीता में उसके विषय, तो कंटिन्यूअस वो विग्रह सेवा करेगा। सबसे बड़ी बात, घर में विग्रह रखेगा, भगवान की सेवा करेगा, भगवान को भोग लगाएगा, वस्त्र पहनाएगा और प्रसाद अर्पण करके फिर खाएगा और भगवान को जगाएगा, सुलाएगा, भगवान को आरती करेगा, तो फिर उसका तो पूरा समय कृष्णमय हुआ ना, भगवान के साथ ही वो रहता है। तो उसको भगवान को याद करने में वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता जो दूसरे निराकारवादी होते हैं या दूसरे अभ्यास योग साधना जो करते हैं उनको जो होता है, उन वो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। इस बात को श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं यहाँ पर कि भक्ति योग अत्यंत ही सरल, शुद्ध तथा सुगम है, बहुत ही आसान है, बहुत ही प्योर है और बहुत ही स्वीट है, मतलब मीठा है, उसको करने में बहुत आनंद आता है। इसका शुभारंभ कैसे होता है वो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि हरे कृष्ण जप से इसका शुभारंभ किया जाता है। जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो शनै शनै हृदय के अंदर बैठे हुए समस्त अपराध, समस्त कलमश, हृदय के कलमश क्या है, कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की ओर आकर्षित होना, यह हृदय की सबसे बड़ी गंदगी है। क्योंकि हम आत्मा है, हमारा संबंध कृष्ण के साथ है और कृष्ण के अतिरिक्त यदि हृदय की और जगह पे जा रहा है तो ये बहुत बड़ा कलमश है। अब जा रहा है तो उसको कैसे रोकना है, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इस शुद्ध भक्ति का, कौन सी शुद्ध भक्ति का, जो यहाँ श्रील भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्यशः, जो अनन्य भाव से सदैव मेरा स्मरण करते हैं उसका शुभारंभ कैसे होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो उससे क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय के अंदर जो गंदगी है, भौतिक वस्तु और व्यक्तियों की ओर आकर्षण है, वो समाप्त होके कहाँ चला जाएगा, भगवान की ओर केंद्रित हो जाएगा। और इस तरह से हम भक्ति में और भी आगे प्रगति करते हैं जब हम महामंत्र से स्टार्ट लेते हैं। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान भले ही सबके साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन अब क्योंकि भक्त के अंदर विभिन्नता है, बाकी सारे लोग क्या करते हैं, भौतिक वस्तुओं को, भौतिक चीजों को, भौतिक बातों को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और भगवान को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो भगवान भी उनके साथ फिर ऐसे ही है। और लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना पूरा का पूरा ध्यान भगवान पर केंद्रित करता है और अपने कर्तव्य तो पूरे करता है, लेकिन आकर्षण उसका केवल आसक्ति कृष्ण में होती है, तो फिर वो शुद्ध भक्त होता है। भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्ति न प्रियः, मैं सबके साथ समान हूँ, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, परंतु ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्, जो प्रेम और भक्ति के साथ मेरा भजन करते रहते सदैव, मैते मैं उसका हो जाता हूँ। क्यों हो जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे हो जाते हैं। और भगवान ने पहले कह दिया कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं भी उसी भाव से उसके उसको फल देता हूँ। तो फिर क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे समर्पण हो जाता है, इसलिए मैं भी उसका बन जाता हूँ। इसी बात को यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान सबों पर कृपालु है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद में कहा गया है, यानि वैश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा वृणुते ते तनुं स्वम्। अर्थात जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान को यथारूप में समझ सकता है। भगवान को समझने के लिए हमारी बुद्धि, जो भौतिक इंद्रियां हैं, वो और ज्ञान, वेदों का अध्ययन, ये सब काम नहीं आता है। बल्कि क्या आता है काम, जितना हम भगवान को सरेंडर करते हैं उतना ही भगवान हम भगवान को समझ सकते हैं। और यहाँ श्रीमद् भगवद् जी कहते हैं कि तथा श्रीमद् भगवद गीता में 10.10 में कहा गया है, क्या कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम, ददामि मैं प्रदान करता हूँ बुद्धि योगम, यानी बुद्धि उसको मैं प्रदान करता हूँ। किसको प्रदान करते हैं, भगवान पहले कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्, जो कंटिन्यूअस प्रेम के साथ मेरा भजन करते हैं उनको ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्तिते, उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे भक्तों को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। आगे श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। अब यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि शुद्ध भक्त जो है वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे तो मैं अच्छी भक्ति करूँगा। हम अक्सर ऐसे आर्ग्यूज देते हैं ना कि अभी हमारे घर में गेस्ट हैं, तो मेरा जॉब कंप्लीट नहीं होता, अभी शादियां होने वाली हैं तो उसमें हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, या अभी कोई बच्चों के एग्जाम्स हैं तो मैं अपनी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, जपा नहीं कर पा रहा हूँ, श्रवण नहीं कर पा रहा हूँ, या इस तरह के बहुत सारे ऑर्ग्यूज होते हैं, बहुत सारे हम बातें कहते हैं कि भाई ये सरकमस्टेंसेस बदल जाएंगे तो मैं भक्ति करूंगा, लेकिन वो ये सिर्फ और सिर्फ झांसा देने वाली बात है। आप सरकमस्टेंसेस इस संसार में ऐसे कभी कंटिन्यूस हो नहीं सकते जिसमें कि आप आराम से भक्ति कर सको। ये संसार दुखालयम है, तो उन्हीं सरकमस्टेंसेस में जैसा कि सिचुएशन है उसी में रहकर हमें भक्ति करनी है, उसी में रहकर अपनी साधना करनी है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता है, भले कितना ही दुष्कर समय आए। जैसे हरदास ठाकुर महाराज को 22 बाजारों में कोड़े मारे जा रहे थे, इतना जोर जोर से जल्लाद उन्हें पीट रहे थे, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे कि अभी तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अभी मैं जप नहीं कर रहा हूँ। जैसे हमारे सर में भी थोड़ा सा दर्द हो जाता है फिर हम क्या बोलते हैं, आज तो मुझसे माला हो ही नहीं रही, सर में बहुत दर्द हो रहा है ना। लेकिन है ना, ऐसा नहीं, भगवान का भक्त ये नहीं सोचता। भगवान का भक्त हर परिस्थिति में, प्रहलाद को हम देखें कि उनके पिता उन पर कितना अत्याचार कर रहे थे, कभी अग्नि में जलाते तो कभी पहाड़ों से गिरवाते, कभी इतने बड़े बड़े हाथियों से कुचलवाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रहलाद ने कहा कि भगवान तुमने इतना ज्यादा मुझे कष्ट दिया है कि अब तो भक्ति नहीं हो रही। नहीं, शुद्ध भक्त चाहे कैसे भी सरकमस्टेंसेस हो अपनी भक्ति को नहीं छोड़ता है, वो कंटिन्यूस कर रहा होता है, वह अनन्य भाव से कृष्ण का चिंतन करता है, उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए कोई भी वस्तु से, कोई भी व्यक्ति से उसको अपनी भक्ति में रुकावट, उसकी भक्ति के लिए रुकावट नहीं खड़ा कर सकता। तो उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए, उसे अपना सेवा कार्य किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ना चाहिए। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं ऐसी जगह पर रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहें अपनी भक्ति वहां पर कर सकते हैं और उस भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। श्री अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आप जहां भी हैं हे प्रभु वहीं वृंदावन है। तो शुद्ध भक्त जो है ना, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, इस यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि भक्ति की जा सके, मैं भारत में चला जाऊंगा तो वहां पर भक्ति करूंगा, या मैं अभी इस जगह पे रह रहा हूँ मैं वृंदावन चला जाऊंगा तो वहां पर नहीं। तुम जहाँ पर हो वहीं पर हाउ डू आई यूज नाउ एज इट इज इन योर सर्विस एंड प्लेजर लॉर्ड, कि जैसा भी वर्तमान समय है उसके लिए शुद्ध भक्त भगवान को क्या कहता है, थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज इट इज, और इस समय इस वर्तमान समय में मैं आपकी सेवा और प्रसन्नता के लिए किस प्रकार से कार्य कर सकता हूँ, केवल एक ही मन में भाव होता है शुद्ध भक्त के। तो वो जहाँ भी रहता है वही वृंदावन का सा माहौल वातावरण क्रिएट करता है। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि सततम तथा नित्य शब्द से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और किन्हीं का ध्यान और उन्हीं का ध्यान करता है। अब नित्य भगवान ने कहा कि अनन्य चेता सततम, अनन्य भाव से कंटिन्यूअस शुद्ध भक्त की यहाँ पर उसका बताया जा रहा है कि कैसा होना चाहिए, अनन्य भाव से, यानी किसी और का और के बारे में विषय और के विषय में विचार किए बगैर अनन्य चित्त से किसको, भगवान को। यो माम स्मरति नित्यश, मुझे याद करता है वो भी कब, नित्यश सदैव याद करता है, चाहे कोई भी सरकमस्टेंसेस हो, चाहे कितनी भी रुकावटें हो, चाहे कितनी भी बाधाएं हो, वो अपनी भक्ति से कभी पीछे नहीं हटता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है, ये शुद्ध भक्त के गुण हैं, जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हो जाते हैं। और जब वो ऐसा करता है तो कृष्ण सुलभ हो जाते हैं आसानी से। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। अब क्योंकि शुद्ध भक्त सदैव भगवान का नाम जप करता है, कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो क्योंकि वो कंटिन्यूस भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, अब भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, तो भगवान उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं, क्योंकि नाम रूप में उसने अपनी जीभा में जकड़ के रखा है उसको। तो इसलिए भगवान कहते हैं तस्याम सुलभ पात्र, केवल भजन करके ही मुझे प्राप्त कर लेता है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्ति योग पांच प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। अब गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में अलग अलग दूसरे योगों के विषय में बताया जाता है, लेकिन फिर भगवान आके भक्ति योग की संस्तुति करते हैं। भक्त्या माम अभिजानन्ति, बाकी भी बहुत सारे योगी हैं, योग करते हैं, अलग अलग कर्म योग करते हैं, ध्यान योग करते हैं, हठ योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, परंतु मुझे प्राप्त करने के लिए क्या है, केवल भक्ति आवश्यक है। भक्त्या माम अभिजानन्ति, तो इस भक्ति के अंदर कौन कौन से भाव होते हैं उनके विषय में भगवान यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताएं कि भक्ति योग की पांच प्रकार से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। कौन कौन से हैं? शांत रस, यानी कि बिल्कुल शांत भाव से बस मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण के दास, कृष्ण को ही, कृष्ण ही सब कुछ है, सर्वस्व है, मुझे उसकी भक्ति करनी है, और चाहे वो मुझे जैसा भी जिस भी रूप में स्वीकार करे, मुझे बस उनकी भक्ति करनी है। कोई शांत रस में भक्ति करते हैं, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त रहते हैं कि बस जीवन का लक्ष्य कृष्ण की भक्ति है, तो मैं कृष्ण की भक्ति ही करूँगा, मुझे और कुछ नहीं करना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, दास के भक्त, जो दास रूप में भगवान की भक्ति करते हैं कि मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं कैसे अपने स्वामी को प्रसन्न करूँ। तीसरे नंबर पे होते सख्य भक्त, जो सखा रूप में भगवान की भक्ति में युक्त रहते हैं, जैसे अर्जुन वो भगवान और उद्धव सखा बनकर भगवान के साथ भक्ति करते हैं उनकी, और उनकी उनको प्रेम, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं मित्र रूप में। आगे वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भगवान की भक्ति में लगा रहता है, जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा और वृंदावन की बहुत सारी गोपियाँ जो भगवान को अपना पुत्र मानती हैं। और उसके बाद है माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होता है। दाम्पत्य प्रेमी यानी जैसे प्रेमी और प्रीतम होते हैं, जैसे गोपियाँ कृष्ण को अपना प्रेमी मानकर उनके साथ माधुर्य संबंध रखती हैं, तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ये पांच रस में किसी भी रस के साथ हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता। अब चाहे आप दास रूप में भगवान के साथ प्रेम करते हो, वात्सल्य रूप में करते हो, सखा भाव में करते हो, या प्रेमी की तरह, लेकिन भगवान को सदैव याद करते हो, क्योंकि अब संबंध जुड़ गया तो फिर एक क्षण के लिए भी हम भगवान को भूल नहीं पाते हैं। जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने क्या कहा, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तो आप कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। अंत समय में अगर मुझे याद करोगे तो फिर कोई संशय नहीं है कि तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो क्योंकि वो भक्त हर समय भगवान को याद करता है, तो भगवान बहुत ही सरलता से उसे याद आ जाते हैं, उसे प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। सदैव ये प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्। तो क्योंकि भक्त सदैव भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलता, तो भगवान भी क्षण भर के लिए अपने भक्त को नहीं भूलता। और श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात पे यहाँ पर एंड करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि आप सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करोगे तो अवश्य ही अंत समय में आपको भगवान याद आएंगे। और भगवान, क्योंकि महामंत्र करते वक्त आप भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलोगे तो भगवान भी आपको एक क्षण के लिए भी नहीं भूलेंगे। से भगवान कहते हैं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि। इस कलयुग में महामंत्र का उच्चारण सबसे सरल और सुगम उपाय है भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उससे हृदय पवित्र होता है और भगवान के चरणों की ओर आकर्षित होता है। इसे भगवान ने कहा तस्याहं सुलभः पार्थ, जो अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्यशः, जो अनन्य भाव से कंटिन्यूअस मुझे स्मरण करता उसके लिए मैं बहुत आसान हो जाता हूँ। तस्याहं सुलभः, वैसे तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभवात्मा भक्तो, कि वेदों में लिखा हुआ है कि वेदों के पढ़ने से भी भगवान को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, परंतु अदुर्लभ आत्मभक्त, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो कंटिन्यूस भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, उनके लिए भगवान बहुत सुलभ हो जाते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 53 और 54 में बहुत ही अच्छे तरीके से बताते। भगवान कहते हैं 11.53 में, नाहं वेदैर्न तपसा नादानेन चेष्टया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। नाहं वेदैर्न तपस्या, ना मैं वेद अध्ययन करने से, ना ही तपस्या करने से, ना दानेन, ना ही दान देने से, न चेष्टया और ना ही पूजा करने से, शक्य एवं विदो दृष्टिम, शक्य मना संभव है इस विधि से मुझे प्राप्त करना या मुझे देख पाना, इस तरह से संभव नहीं, किस तरह से, वेदों के अध्ययन करने से, तपस्या करने से, दान देने से, यहाँ तक कि पूजा करने से भी। तो भगवान कहते हैं दृष्टवान असि माम यथा, जैसा मैं हूँ ऐसा तो आप इन सारे चीजों से मुझे नहीं समझ सकते, तो फिर कैसे समझे भगवान आपको। तो भगवान कहते हैं 54 में, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विदुषुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। अब अगर भक्ति नहीं होगी तो भगवान को देखकर कोई उस रूप में भगवान को समझ ही नहीं सकता कि कृष्ण कैसे कैसे कार्य करता है। उल्टी सीधी बातें करेंगे भगवान के विषय में कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। लेकिन यदि श्रद्धा है कृष्ण में, शास्त्र में, और उस श्रद्धा के साथ हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान के समस्त कार्यकलापों को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हम सदैव भगवान का स्मरण करते हैं ना। और भगवान ने कहा कि जब तुम कंटिन्यूस मेरा स्मरण करोगे, तेषां सतत युक्तानां भजन प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते, फिर मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ और फिर क्या करता हूँ, तेषामेवानुकम्पातम अहम् अज्ञानजन्तम, अपनी विशेष अनुकंपा से उनके हृदय का ज्ञान को समाप्त करता हूँ और नाशयाम आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, हृदय के अंदर जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, उसे ज्ञान के प्रकाशमान प्रज्वलित दीपक के द्वारा समाप्त कर देता हूँ। फिर क्या होता है, वो मुझे बहुत ही सरलता से समझ लेता है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। तो भक्ति का इस युग में बहुत ही सरल साधन है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि वैसे तो ये भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड ब्रह्मयते कौन भाग्यवान जीव, कि बहुत सारे करोड़ों करोड़ों जीव हैं, वो यूं ब्रह्मांडों में भटकते रहते हैं, कभी कहीं पर जाते हैं, कभी ऊपर के लोकों में, कभी नीचे के लोकों में, कभी मध्य में, कभी स्वर्ग में, तो कभी नरक में जाते रहते। उनमें से कौन भाग्यवान जीव, कोई एक भाग्यवान जीव होता है जो गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लता बीज, जिस पर गुरु और कृष्ण की कृपा हो जाती है और उसे भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है। अब भक्ति जो है वास्तव में बीज की भांति है, लेकिन अब बीज आपको प्राप्त हो जाए और उसको आप तिजोरी में रख दो तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। बीज मिला है तो उसको क्या करना है, नरम धरती पर जमीन पर बोना पड़ेगा। और वो नरम धरती कैसी है, कौन सी है, हृदय जो है हमारा, उसमें भक्ति का बीज बोया जाता है। हृदय को नरम कैसे करना है, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सही श्रोणा, वृक्ष से भी अधिक सहनशील और राह में पड़े हुए तिनके से भी अधिक विनम्र बनकर उस बीज को अपने हृदय में रखना है, भक्ति के बीज को। और फिर क्या करना है, श्रवणम कीर्तनम जले सिंचनम, श्रवण करना है भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को, श्रीमद् भागवतम को, श्रीमद् भगवद गीता को, और कीर्तन करना है भगवान के पवित्र नाम का, जप करना है, इस जल से इसको सिंचन करना है। और इस प्रकार से हमारी भक्ति लता का बीज जो है उसमें से कोमल निकलेगी और उसमें एक छोटा सा फूल निकलेगा भक्ति का। और जैसे जैसे हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते जाएंगे, कथाओं को श्रवण करते जाएंगे, ऐसे ऐसे से क्या होगा, वो भक्ति का, भक्ति लता से जो बीज से जो वृक्ष निकला है वो बढ़ते 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 सातों आसमानों को चीर कर गौलोक वृंदावन धाम में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रियतम श्रीमती राधा रानी के साथ विराजमान है, वहाँ पर ये वृक्ष का फूल जो है वो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। और यह है सिद्धि, यह है जीवन की सिद्धि के अंत, हमारा भक्ति लता का बीज जो है उसमें से जो फूल निकले वो हम भगवान के श्री चरणों तक समर्पित कर सकें। और इस तरह से करते करते करते, श्रवण और कीर्तन करते करते करते, अंत समय में भगवान को स्मरण कर सकें। वास्तव में शास्त्र कहता है कि मनुष्य जन्म का क्या लाभ है, जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मरति। अगर अंत समय में आपको भगवान की स्मृति हो आई, स्मरण हो आया, तो समझो आपका जीवन सफल हुआ। अन्यथा समझना कि तुम फेल हो गए इस बार फिर, क्योंकि अंत में यदि भगवान याद नहीं आएंगे तो फिर पुनः वही सर्कल्स को हमें झेलना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस बंधन में पुनः फंसना पड़ेगा। और अंत समय में भगवान को स्मरण करने का आज भगवान ने बहुत ही सरल तरीका बताया कि यदि आप मेरी भक्ति करते हो, भक्ति कैसे करनी है, श्रवण करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की विग्रह सेवा करनी है, गुरु आदेश के अनुसार रूल्स को फॉलो करना है, ऐसे करते 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 अंत में अवश्य भगवान की स्मृति हो जाएगी, क्योंकि भगवान ने कहा है तस्याहं सुलभः पार्थ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।